परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज भी आप परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए रेडियो के निकट बैठे हैं। मैं उन सभी मित्रों का स्वागत करता हूं जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्री है, और पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा कि शांति जो पहला अद्भुत लाभ है जो परमेश्वर की संतान को प्राप्त होता है वह क्रूस के द्वारा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये शांति जो असीम है, जो कोई नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और आज हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और उससे आगे देखेंगे पहुंच। ये पहुंच के बारे में आज हम रोमियो के पत्र 5 अध्याय के 2 पद से आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में देते हैं। आज जब हम आपके वचन में से फिर से एक बार सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है पिताजी कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। विशेष करके हमारे उन नए श्रोता मित्रों को अनुग्रह दीजिए ताकि आज वे आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश एवं चिंतित हैं, अपने जीवन लीला को समाप्त करने की सोच रहे हैं। प्रभु, आप उनके मन को बदलें, उन्हें आशीष दें ताकि आज आपके वचन के द्वारा वो जीवन बच जाए। हाँ प्रभु, इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। आप हम सब की सहायता करें, प्रत्येक को नाम बा नाम आशीष दें। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 2 पद। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 2 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, पहुंच का अभिप्राय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके संबंध बना सकते हैं। यह एक सौभाग्य है कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम अपने आप के बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में, अपने मित्रों एवं प्रियजनों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर की संतान के पास स्वर्गीय पिता तक पहुंच है जो यहां हमारी पुकार सुने और निश्चय ही उत्तर दे। अब इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपकी इच्छा अनुसार उत्तर दे। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि वह सदा ही अपनी प्रार्थना सुनता है और प्रकट करता है कि वह एक भला स्वर्गीय पिता है। जब वह कहता है नहीं, वह अपनी बुद्धि के आधार पर आपकी प्रार्थना सुनता है, आपकी मनोकामना के आधार पर नहीं। आप यहां देखेंगे कि विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच है उसके अनुग्रह में जो हमारा स्थान है। जी हाँ, आइए अब हम आगे देखें और देखें आशा, परमेश्वर की महिमा की आशा। यह तीसरा लाभ है। यह आशा वह आशा है जिसकी चर्चा धर्मशास्त्र में है। पौलुस ने एक युवा प्रचारक तीतुस को लिखा 2 अध्याय के 13 पद में, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे। मेरे विचार में महाक्लेश की प्रति वह धन्य आशा है। मैं तो निश्चय ही उसकी प्रतीक्षा में नहीं हूँ, क्योंकि वह आशा नहीं भय है। प्रभु की प्रतीक्षा करना कि वह आकर कलीसिया को इस संसार से उठा ले जाए, वह धन्य आशा है। यह उसके आगमन पर होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान की यह आशा है। इसका अर्थ है कि उसका भविष्य है, उसके पास निहारने को भविष्य में कुछ है। आप और मैं आज उस युग में वास करते हैं जिसमें जीवन की सब सुविधाएं हैं, कम से कम समृद्ध समाज में, परंतु उसके पास भविष्य नहीं है। जेम्स रेस्टन, द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक ने वर्षों पूर्व कहा था कि इस संसार में समस्याओं का ऐसा पहाड़ बन गया है जिसका समाधान किसी के वश में नहीं है। परमेश्वर का वचन, जैसा आप जानते हैं, इस कथन का समर्थक है। मेरे विचार में यह पहला अवसर है जब एक समाचार पत्र और बाइबल परस्पर सहमत हैं। मेरे प्रियो, आज हमें कैसा अंधकारपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया जा रहा है। आप कैसा भी प्रदर्शन करें, उचित तो यही होगा कि आप तथ्यों का सामना करें। लाई बर्नर्ड सॉ ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बात कही थी कि उन्होंने देखा कि नास्तिकतावाद ने संसार की समस्याओं का समाधान नहीं किया है। उन्होंने कहा, आप एक नास्तिक को देख रहे हैं जिसने अपना विश्वास त्याग दिया है। एक नास्तिक अपने विश्वास का त्याग कर दे तो उसके पास संसार में थामने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, आज संसार आशा की खोज में है, एक भविष्य की खोज में है। इससे समझ में आता है कि संपूर्ण संसार क्यों परेशान है, और मेरे विचार में यह अनेक सांसारिक अभियानों की भी व्याख्या करता है जो आज प्रचलन में है। यही कारण है कि आज मध्य वसन, नशीले पदार्थ और अन्य मार्ग लोगों ने अपनाए हुए हैं, जो एक बंद गली ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भविष्य की आशा को खो दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान को आशा है, एक धन्य आशा, और वह जानता है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 28 पद को आप देख सकते हैं। वह जानता है कि परमेश्वर के प्रेम से उसे कोई अलग नहीं कर सकता। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 39 पद में आप पढ़ सकते हैं। यह आशा कैसी अद्भुत आशा है, कलीसिया की धन्य आशा। और चौथी बात अब हम देखते हैं, समस्याओं में विजय। आइए हम रोमियो के पत्र 5 अध्याय उसके 3-4 पद को पढ़ें। लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, हम कष्टों के मध्य आनंद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, परंतु धीरज स्वतः ही उत्पन्न नहीं होता, धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय मित्रों, यह एक रोचक बात है कि कष्टों के साथ तीन शब्द जुड़े हैं, आनंद, आशा और धीरज। यद्यपि यह आत्मा का फल है, परमेश्वर को हम में इनका विकास करना होता है। दूसरे शब्दों में, विश्वासी के जीवन में सर्वोत्तम वस्तु उत्पन्न करने के लिए कष्ट आवश्यक है। एकमात्र विधि जिसके द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में फल उत्पन्न करता है, वह है उसकी डालियां काटना और छांटना। परंतु संसार की रीति अलग है। यदि आप एक अविश्वासी अच्छी सुविधाजनक परिस्थिति में हैं और आपको कोई कष्ट नहीं है, तो आप आमोद प्रमोदी हो जाते हैं। आप में धीरज की उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात धीरज भी उत्पन्न हो सकता है और नहीं भी, और आपकी आशा भी बंधी रहती है, परंतु परमेश्वर की संतान के साथ ऐसा नहीं होता है। सच तो यह है कि कष्ट हमारे जीवन में फल उत्पन्न करता है। आइए हम पांचवी बात को देखें, परमेश्वर का प्रेम। रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं, इसका अर्थ है हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम, और यह प्रेम हमें दिए गए पवित्र आत्मा द्वारा सत्यापित होता है। अब हम छठवीं बात देखते हैं, पवित्र आत्मा। रोमियो की पत्री में यह पहला स्थान है जब पवित्र आत्मा का उल्लेख किया गया है। यह हमारे वर्तमान लाभों की सूची में उसका संदर्भ है। हम अध्याय 8 तक पवित्र आत्मा की सेवा के विषय नहीं देखेंगे, जहां 20 बार उसका उल्लेख किया गया है। यहां बस यही कहा गया है कि पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को दिया गया है, कुछ विश्वासियों को नहीं, सब विश्वासियों को। पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है और तुम अपने नहीं हो। कुरिन्थ के विश्वासी वास्तव में संसारिक मनुष्य थे। पौलुस उन्हें मसीह में शिशु कहता है, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा उनमें वास करता है। जी हाँ, यह एक अद्भुत बात है। मैं अति प्रसन्न हूँ कि जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तब मुझे वह सब कुछ मिल गया जो उद्धार के निमित्त परमेश्वर देता है, और पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासी के मन में इस प्रेम को यथार्थता प्रदान करता है, अर्थात हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को। मित्रों, आज हमें इस सत्य का अंतर्बोध होना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, मनुष्यों से प्रेम करता है। मनुष्यों को अपने जीवन में इसका कैसा आश्वासन प्राप्त करना है? केवल परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में परमेश्वर के प्रेम को डालता है। अब ध्यान दीजिए कि पौलुस परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या कैसे करता है। रोमियो के पत्र 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। मित्रों, ध्यान दीजिए कि मसीह अधर्मियों के लिए मरा, भले बालक बालिकाओं के लिए नहीं, परंतु अधर्मी पापियों के लिए, जो वास्तव में उसके बैरी थे, जो उससे घृणा करते थे, और जब वे उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे तब उसने कहा, लुकार के सुसमाचार 23 अध्याय उसके 34 पद में, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और मेरे मित्रों, आप और मैं अधर्मियों में गिने गए थे। जी हाँ, एक बार मेरी भेंट एक युवक से हुई जिसकी टोपी पर, कोट पर और पतलून पर और जूतों पर भी प्रेम लिखा हुआ था। मैंने उससे इसका कारण पूछा। उसने कहा, क्यों दोस्त, परमेश्वर प्रेम है, मैं उससे सहमत हूँ। तब उसने कहा, परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा मेरा उद्धार किया है। मैंने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा आपका उद्धार नहीं किया है। मेरे प्रियो, आज भी अनेक जन मेरी इस बात से अचंभित होते हैं, परंतु यह सच है मित्रों कि परमेश्वर प्रेम के द्वारा उद्धार नहीं करता है। परमेश्वर प्रेम से बढ़कर है, वह पवित्र है, धर्मी है। परमेश्वर स्वर्ग का पश्च द्वार खोलकर अंधकार में पापियों को प्रवेश नहीं देता है। वह स्वर्ग के अवरोधकों को हटाकर पापियों को प्रवेश नहीं दिलाता है। यदि वह ऐसा करे तो वह एक दुष्ट न्यायाधीश से बढ़कर नहीं, जो अपराधी को छोड़ देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर को पापी के दोष के लिए कुछ करना आवश्यक है। न्याय तो होना ही है, तथापि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बच्चों से यह कहना उचित नहीं कि यदि वे बुराई करें या दुष्टता करें तो परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करेगा। मेरे मित्रों, सच एवं रोचक बात तो यह है कि परमेश्वर छोटे बच्चे से प्रेम करेगा, चाहे वह कुछ भी करे, वह आपसे प्रेम करता है, आपके परिवार से प्रेम करता है, आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते हैं। अब यह बात और है कि आप स्वयं ही अपने आप को ऐसी स्थिति में रख लें जहां आप परमेश्वर के प्रेम के अनुभव को न कर पाएं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, आप सूर्य को चमकने से नहीं रोक सकते हैं, परंतु आप धूप से बच सकते हैं, आप पाप की छतरी लगा सकते हैं, असहयोग की छतरी लगा सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बाहर होने की छतरी लगा सकते हैं, जिससे कि उसका प्रेम आप तक पहुंचने नहीं पाएगा। यद्यपि ये सब बातें आपको परमेश्वर के प्रेम के अनुभव से वंचित करती हैं, वह फिर भी आपसे प्रेम करता है। जी हाँ, आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह आपसे प्रेम करता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके मित्र आपसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वह आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वह प्रेमी परमेश्वर है। मेरे मित्रों, इस युवक से बातें करते हुए मैंने कहा कि वह मुझे बाइबल संदर्भ दिखाए जहां लिखा है कि परमेश्वर प्रेम के कारण हमारा उद्धार करता है। निश्चय ही वह नहीं जानता था। मैंने उसे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ करके सुनाया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी हाँ, परमेश्वर अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार करता है, प्रेम के द्वारा नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने जगत का उद्धार किया। ओह नहीं, वह नहीं कर पाया। पवित्र परमेश्वर को अपने गुणों में खरा होना था, जी हाँ, परंतु उसने यह अवश्य किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रदर्शन किया आपके लिए, मेरे लिए, कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया आपके लिए अपनी जान देने को। उसने आपके पापों का दंड चुकाया है और हमारा पवित्र परमेश्वर आपका उद्धार करेगा यदि आप उसके पास आ जाएं। निसंदेह आपको उसके मार्गों में आना पड़ेगा। आज एक भ्रांति यह है कि आप उसके पास अपने तरीके से आ सकते हैं। जी हाँ, यह जगत आपका नहीं है, यह परमेश्वर का जगत है। आप और मैं नियम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, नियम निर्धारण उसका अधिकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में उसने कहा कि मसीह के बिना उसके पास आना संभव नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मित्रों, आइए आप देखते हैं कि वह आगे क्या कहता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। मेरे मित्रों, क्या आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो आपके लिए मरे? क्या आप अपनी उंगली पर भी उनके नाम गिन सकते हैं जो आपके लिए मरे? क्या आप अपनी उंगली पर उनके नाम गिना सकते हैं जो आपसे इतना प्रेम करते हो कि आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? निश्चय ही आप उंगली पर गिन सकते हैं। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को आपके लिए मरने को भेज दिया, और यदि आवश्यकता हो तो वह आज भी आकर आपके लिए फिर से मर जाएगा। यदि आपके उद्धार के लिए यह आवश्यक हो तब वह आपसे इतना अधिक प्रेम करता है कि वह मरने के लिए भी तैयार है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपको बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है? हम रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जी हाँ, वह आपके और मेरे लिए मरा। यही परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शन है। परंतु परमेश्वर हमें प्रेम के द्वारा उद्धार नहीं दिलाता है, वह अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार करता है, क्योंकि पाप का दोष मसीह की मृत्यु से दूर होता है और वह अपनी बाहें फैलाकर आज आपका उद्धार करता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। अब आइए देखें 7वीं बात, क्रोध से मुक्ति। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 9 पद में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जी हाँ, जिस क्रोध की यहाँ चर्चा की गई है वह भविष्यद् वक्ताओं द्वारा उद्घोषित किया गया था। सपन्याह की पुस्तक 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। क्रोध का अर्थात रोष का यह महान दिन क्या है या क्या होगा? मसीह यीशु ने इसे महाक्लेश का दिन कहा था। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, हम पाप के दंड से बचाए गए हैं। मेरे प्रियो, वह आज भी हमें पाप के अधिपत्य से बचा रहा है। वह भविष्य में भी हमें पाप की उपस्थिति से बचाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक विश्वासी उठाए जाने के समय, स्वर्ग में जाने के समय, इस पृथ्वी से कूच करेगा। उस दिन हम क्रोध से बचेंगे, इसलिए नहीं कि हम इस योग्य हैं, परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हम अनुग्रह द्वारा बचाए गए लोग हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित रहते हैं और आज से 10 करोड़ वर्ष बाद भी हम स्वर्ग में परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित रहेंगे। हम उसके द्वारा क्रोध से बचाए गए हैं, मसीह यीशु के द्वारा। आइए हम पढ़ें रोमियों के पत्र 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरे प्रियो, वह पृथ्वी पर आकर मरा कि हम उद्धार पाएं, वह स्वर्ग में जीवित है कि हमें उद्धार में रखे। हम रोमियो के पत्र 5:11 में आगे पढ़ते हैं, और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, और मेरे विचार में यह धर्मशास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संदर्भों में से एक है। जी हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि इसी समय आप जहां भी हो, आपको जो भी समस्याएं हो, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं। जरा सोचें, आप आनंदित हो सकते हैं क्योंकि वह जीवित है और क्योंकि वह जो है सो है। आप आनंदित हो सकते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए उद्धार उपलब्ध कराया है और वह हम पापियों का उद्धार करने का इच्छुक है और हमारे एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में लाना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आएं। उसने हमारे उद्धार की योजना बनाई है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से प्रेम करता है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह आपसे प्रेम करता है। क्या यह आपके आनंद के लिए पर्याप्त नहीं है? ओह, परमेश्वर के संतान का मन आनंद से भरा होना चाहिए। उसे बिल्ली की नाई दांत दिखाते नहीं रहना है, परंतु निश्चय ही आनंदित मन का होना है। उद्धार के 8 अद्भुत लाभ यही है। मेरे मित्रों, आइए हम यहोवा की स्तुति करें, क्योंकि सचमुच में जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तो ये 8 अद्भुत बातें हमारे जीवन के साथ में जुड़ती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जानें, अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, उद्धार के उस आनंद को प्राप्त करें जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। प्रिय मित्र, क्या आप चाहते हैं कि आप इस आनंद को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, इस बात को जाने कि कोई आपसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि वह आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार है? मेरे मित्रों, इस संसार का प्रेम भिन्न है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है, उस दहकते हुए नरक से बचाना चाहता है ताकि आप उसके राज्य में पाए जाएं, आप उसके शांति और आनंद को प्राप्त करें, उस महान आशा को प्राप्त करें जो आपके जीवन में देना चाहता है। आज अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे कहें, प्रभु मैं भी उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, मेरे जीवन बहुत कठिन है, बहुत परेशानियों में हूँ, लेकिन आज आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मैं अपने जीवन को आपके निकटता में लाती हूँ, पिताजी आप मेरी मदद कीजिए। प्रिय मित्र, वह आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिनसे आपने बातचीत किया है। आज जो अपने हृदय के द्वार को खोल रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन को आशीषित कीजिए, आज उनसे बातचीत कीजिए, उस आनंद को उनके जीवन में दे दीजिए जो उद्धार का आनंद है, जो कीमती और बहुमूल्य है, जो आपके द्वारा मिलता है, ताकि वे आपकी निकटता में रह सकें। जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक की प्रार्थना को सुने, उनकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर हमारा अध्ययन का समय समाप्त हुआ और मैं आशा करता हूँ कि अगले अध्ययन में हम फिर से नई बातों के साथ नई चीजों को सीखने पाएंगे। तब तक प्रभु की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है,
हारा है।
यीशु ने उसको मारा है,
मारा है।
यीशु ने खून बहाया है,
बहाया है।
यीशु ने हमको बचाया है,
बचाया है।
यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा।
पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो।
यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है,
सच्चा है।
जो भी वो कहता है होता है,
होता है।
यीशु यहोवा रफा है, यीशु खुदा का है बेटा।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो। कहा यीशु ने एलाजर,
एलाजर,
आ निकल कब्र से बाहर,
बाहर।
चार दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम।